परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में फिर से एक बार नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप निश्चित रूप से अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर रहे हैं और आज के अध्ययन में भी आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। परंतु यह तभी संभव है जब आप उसके व्यवस्था अथवा 10 आज्ञाओं को समझकर उसके अनुकूल जीवन जीने का प्रण करते हैं। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में इसका समुचित वर्णन मिलता है, जो आज के प्रसारण में हमारे ध्यान और मनन का विषय होगा। इसे 2 भागों में बांटा गया है और प्रथम भाग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय के विषय इस प्रकार हैं। परमेश्वर इसराइली समाज को 10 आज्ञा प्रदान करते हैं, ईश्वर मूर्ति पूजा को मना करते हैं तथा लोगों तक पहुंचने पर उसका प्रभाव भी स्पष्ट दिख पड़ता है। वेदी के संबंध में भी उचित निर्देश दिए गए हैं। टिप्पणी के रूप में हम देखते हैं, निर्गमन 20 अध्याय में हम व्यवस्था के दिए जाने के बारे में पढ़ते हैं। 10 आज्ञाएं पहले ही दी गई है, परंतु वे व्यवस्था का ही एक भाग है। वेदी से संबंधित नियमों के आदेश भी वहां दिए गए हैं। व्यवस्था तथा वेदी साथ साथ ही हैं। व्यवस्था से पता चलता है कि मनुष्य पापी है और उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और बलिदान चढ़ाने के लिए एक वेदी चाहिए। पाप के प्रायश्चित के लिए लहू बहाना आवश्यक है। मित्रों, आपके स्नान घर में चेहरे देखने वाले शीशे अवश्य होंगे और उसके नीचे एक कुंडी भी। व्यवस्था की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। उसमें हमारी शक्ल दिखाई पड़ती है, परंतु शीशे में आपको अपनी शक्ल दिखाई देती और साथ ही दाग धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। परंतु आप शीशे में दिख रहे चेहरे को साफ नहीं करते हैं, परंतु आप अपने चेहरे को साफ करते हैं। उसी प्रकार व्यवस्था शीशे की तरह हमारे पापों को उजागर करती है और ठीक शीशे के नीचे धोने की बेसिन होती है जिसमें हम धोते हैं। किसी ने इस प्रकार से कहा है, यीशु के घाव से रक्तपूर्ण एक सोता बहता है, जो पापी उसमें करे स्नान निर्दोष हो जाता है। मित्रों, हम आगे देखते हैं 10 आज्ञाओं का दिया जाना। इसराइल को दी जाने वाली व्यवस्था का प्रथम भाग 10 आज्ञाएं ही थी, जो एक आचरण संहिता थी। हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मित्रों, परमेश्वर ने ये वचन कहे, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूं, जो तुझे मिस्र देश से दासत्व के घर से बाहर निकाल लाया और इसी आधार पर तुम्हें अपनी व्यवस्था प्रदान करता हूं। कृपया ध्यान दें कि इसराइल ने व्यवस्था की मांग की थी और तभी उसने व्यवस्था देकर उन्हें अनुग्रहित किया, जिसमें पहले 10 आज्ञाएं हैं। 10 आज्ञाओं का अध्ययन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम, यह एक नई आचार संहिता व नवीन नीति शास्त्र है। व्यवस्था दिए जाने के पूर्व से ही नया नीति शास्त्र अस्तित्व में था। वास्तव में यह तो अदन की वाटिका के पूर्व से ही था, जब प्रथम आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जल प्रलय से पूर्व और बाद में भी नई नीति शास्त्र उपलब्ध थे। वर्तमान में यह बहुत दूर तक जा चुकी है और हम अपने आप को परिकृष्ट विवेकी पापी समझने में गर्व अनुभव करते हैं। परंतु हम ऐसे नहीं हैं, हम केवल कच्चे और कृत्रिम पापी हैं। स्वाभाविक पापी 10 आज्ञाएं परमेश्वर के स्तर मापदंड को हमारे समक्ष रखती है। 10 आज्ञाओं से कोई भी व्यक्ति लुका छिपी नहीं खेल सकता। मित्रों, दूर दराज के ब्लैक बेल नामक द्वीप समूह में अपराधियों का एक कब्रिस्तान था। उसके कब्र के चिन्ह पटल पर यह लिखा था, जॉन स्मिथ की हड्डियों के कुछ अवशेष यहाँ गड़े हैं, जिसने उसके जन्मदाता का सदैव विरोध किया। 10 आज्ञाओं को फुटबॉल की तरह खेला और 35 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ एवं पत्नी के अतिरिक्त किसी ने भी आंसू नहीं बहाए, शांति से उन्हें विदा किया। परमेश्वर की आज्ञाओं का अनादर करने वाले व्यक्ति को उजागर करने वाली उक्त पंक्तियां कब्र पटल पर चिन्हित है। 10 आज्ञाओं का फुटबॉल की तरह खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति ईश्वर के दंड से बच नहीं सकता। मित्रों, अक्सर हम जैसे प्रचारकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार तो करते हैं, पर उसकी व्यवस्था अर्थात विधान की समुचित सराहना नहीं करते। उसका अनादर करना, तिरस्कार करना अथवा यह सिखाना कि केवल अनुग्रह से ही हमारा बचाव है और दंड के अभाव में इस इच्छा को भी तोड़ा जा सकता है। उपर्युक्त आरोप हम पर लगाए जाते हैं, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। इसके विपरीत प्रत्येक प्रचारक जो परमेश्वर के अनुग्रह को सिखाता है, विश्वास से उद्धार प्राप्ति के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह सच होता है। वह व्यवस्था की विशेषताओं को खूब अच्छी तरह जानता है। इस समस्या का संतोषप्रद उत्तर पौलुस ने रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में दिया है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? प्रिय मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि आप पाप करते रहें और स्वेच्छा से 10 आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो फिर आप परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा नहीं बच सकते हैं। जब आप वास्तव में उद्धार पाए हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न रखना चाहेंगे, जो 10 आज्ञाओं में प्रकट की गई है। इसलिए मेरा मानना है कि परमेश्वर के अनुग्रह के प्रत्येक प्रचारक को परमेश्वर के विधान के प्रति श्रद्धा और आस्था भी होना है। जैसा भजन संहिता का लेखक का कथन है, मैं तेरी व्यवस्था से कितना प्रेम करता हूँ, दिन भर मैं तेरा पाठ करता हूँ। मित्रों, व्यवस्था व विधान क्या है? किसी ने इसकी परिभाषा परमेश्वर की बुद्धि से की है। यह गलत परिभाषा हो सकती है। परमेश्वर के मन में मनुष्य को कैसा होना चाहिए, इसका प्रगटीकरण ही विधान है। व्यवस्था में अनुग्रह या दया के लिए कुछ भी स्थान नहीं है। भजन संहिता 19 अध्याय उसके 7 में भजन का लेखक लिखता है, प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, आत्मा को संजीवन देने वाली, प्रभु की साक्षी विश्वसनीय है और बुद्धिहीन को बुद्धि देने वाली है। विधान के अनुरूप आपको सिद्ध होना चाहिए। मेरी मुलाकात आज तक किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुई जो परमेश्वर के मापदंड में खरा उतरा हो। तो व्यवस्था कोई गलत धारणा नहीं है और न ही अच्छे इरादों से इसका कुछ लेना देना है। यह सिद्ध पूर्ण आज्ञाकारी होने की अपेक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है। मित्रों, प्रभु की व्यवस्था सटीक है। हमारी धारणाएं सही और गलत के संबंध में हमारे वातावरण से प्रभावित होता है। इसका वास्तविक कारण हमारा पतित स्वभाव है। व्यवस्था परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर ने सही और गलत के बीच एक सीमा रेखा खींच दी। आप पूछेंगे, आप कैसे जानते हैं कि सही क्या है? परमेश्वर बताते हैं कि सही क्या है। आधुनिक पीढ़ी के लोग जो बुरी तरह स्वतंत्रता के पीछे पड़े हैं, पूछ रहे हैं सत्य क्या है, चोरी करना क्यों गलत है। उन्हें चोरी से कोई परहेज नहीं है, परंतु उन्हें यह आज्ञा पसंद है, हत्या न कर, क्योंकि उनका कथन है कि अपराधियों को दंडित करते वक्त सरकार भी हत्या करती है। यह लोग कैसे असंगत अर्थात विरोध करते हैं। वे व्यवस्था के प्रति कितने अज्ञान है। झूठ बोलना अथवा चोरी करना यह क्यों गलत है? क्योंकि परमेश्वर ने इसे गलत कहा है। आप कह सकते हैं यह तो मानव जाति के लिए अच्छा है। बेशक ऐसा तो है। व्यवस्था निसंदेह आश्चर्यजनक बात होगी यदि मनुष्य उसका पालन करने में सफल हो। मनुष्य 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता तो भी अनेक जेल में है, दरवाजों पर ताले पड़ते हैं। बैंक से पैसा उधार लेने के लिए आपको 10 कागजों पर हस्ताक्षर करना होता है। इतना सब क्यों करना पड़ता है? इस तथ्य की साक्षी है कि उनका आप पर भरोसा नहीं है। एक समय था जब मनुष्य का शब्द ही काफी समझा जाता था, परंतु अब वह समय नहीं है। मानवीय आचरण के लिए व्यवस्था एक मानदंड बन चुकी है। चोरी, झूठ और व्यभिचार गलत है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहते हैं। मित्रों, व्यवस्था अपने को कभी थोपता नहीं। व्यवस्थापक के पास शक्ति या अधिकार होना चाहिए। उसके व्यवस्था में जबरदस्त स्थिरता है। उदाहरण के स्वरूप गुरुत्वाकर्षण के नियम को लीजिए। आप जितना चाहें अपनी मर्जी से ऊपर उठ सकते हैं। ढील न दीजिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम कार्यरत है। आप उसको पलट नहीं सकते। आप सोच सकते हैं कि आप इसे करने पाएंगे, परंतु आखिरकार हार माननी ही पड़ेगी। अधिकतर लोगों का सोचना है कि वे दाएं बाएं सब तरफ 10 आज्ञाएं तोड़कर भी काम चला सकते हैं। मुझे न्यूयॉर्क में अम्पायर स्टेट इमारत पर से एक व्यक्ति के कूदने की कहानी याद आती है। 50वीं मंजिल से गुजरते हुए एक पुरुष ने देखा और पूछा, कैसा लग रहा है? उसने जवाब दिया, यहाँ तक तो सब ठीक है। यह वो स्थल था जहाँ गुरुत्वाकर्षण नियम स्वयं को खींचे था। निचले 50 तल्ले के बाद उसे पता चलेगा कि सब ठीक है अथवा नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी नियम को नियम होने के लिए उसे लागू करना चाहिए। अतः परमेश्वर यजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसके 4 पद में कहते हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करता है केवल वही मरेगा। मित्रों, व्यवस्था को लागू करना चाहिए और नियम को तोड़ने वाले को सजा मिलना ही चाहिए। एक और दृष्टिकोण है जिसे सही प्रकार से समझना चाहिए, वह है व्यवस्था और अनुग्रह को मिला जुला कर एक पद्धति में ढालना। व्यवस्था और अनुग्रह की एक ही पद्धति में ढालने से हम व्यवस्था के गौरव, वैभव तथा अर्थ को कम करते हैं। व्यवस्था में कोई प्रेम नहीं है, व्यवस्था में अनुग्रह भी नहीं है। अनुग्रह उसकी भलाई, अच्छाई और महिमा से वंचित हो जाता है। यदि हम उसे व्यवस्था से मिला देते हैं, तब अनुग्रह की छोर से हम आश्चर्य, आकर्षण और इच्छा को काट देते हैं। व्यवस्था और अनुग्रह के मिलने से हम पापियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। व्यवस्था निर्धारित करती है कि मनुष्य को क्या होना चाहिए। अनुग्रह से पता चलता है कि परमेश्वर क्या है। व्यवस्था का वैभव और गरिमा ऐसी वस्तु है जिससे हमें सम्मानित करना चाहिए। परमेश्वर है और मानव और परमेश्वर के मध्य का अंतर समझने में व्यवस्था हमारा प्रकाशन करता है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 21 पद में पौलुस प्रश्न पूछते हैं, आप जो व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हैं, मुझे यह बताइए, क्या आप यह नहीं सुनते कि व्यवस्था क्या कहती है? क्योंकि मानव 10 आज्ञाओं की तराजू में तौला गया है और कम निकला है। आप अपने को दूसरों के मुकाबले नहीं तौलते। यह बहुत आसान है यदि मनुष्य ऊंचे पर्वत से नीचे झांक कर उस व्यक्ति पर दृष्टि डाले जो निचले पर्वत शिखर पर है और बोले, मैं तुमसे अधिक ऊंचाई पर हूँ। ऊंचे पर्वत पर खड़े व्यक्ति को समझना होगा कि वह चंद्रमा तक नहीं पहुंचा और न ही स्वर्ग तक। इससे आपको सीखना है कि परमेश्वर के मापदंड से कितने नीचे हैं। व्यवस्था से यह भी पता चलता है कि मानव एवं परमेश्वर के बीच की खाई और उस पर पुल बांधने में यह कितना असमर्थ है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसके 19 पद का कहना है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है वह उन लोगों से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का मुंह बंद हो जाए और परमेश्वर के सामने समस्त संसार दंड के योग्य माना जाए। रोमियों की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 3 पद में पौलुस निम्न बातों को कहते हैं, मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की व्यवस्था जो कार्य करने में असमर्थ थी, वह कार्य परमेश्वर ने कर दिया। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार परमेश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया। मित्रों, दोष व्यवस्था में नहीं पर हम में विराजमान है। हमने देखा कि व्यवस्था एक शीशा के समान है जो मनुष्य की पाप में दशा को प्रतिबिंबित करती है। अधिकतर लोग अपने आप को शीशे में देखकर सोचते हैं कि वे बिल्कुल स्वच्छ हैं। यहां मुझे एक परियों की कहानी याद आती है जिसमें रानी परी ने शीशे में देखकर कहा, दीवार पर जड़े हे शीशे, मुझे बताओ हमें सबसे सुंदर कौन है। वह शीशे से कहलवाना चाहती थी कि वही सर्वांग सुंदरी है, परंतु शीशे ने अपनी चुप्पी से सत्य को कहा कि वह नहीं पर कोई और है। आज सबसे दिलचस्प बात भी यह है कि अधिकतर लोग 10 आज्ञाएं और वचन के शीशे में अपने को देखकर यह बात बोलते हैं कि हे शीशे, शीशे हमें यह समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। मित्रों, केवल अंतर इतना है कि वे स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देकर कहते हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उनका सोच है कि वे व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। मेरे मित्र, आपको नजदीक से शीशे में देखना है और तब शीशे से ही उत्तर प्राप्त करना चाहिए। व्यवस्था ने कभी भी किसी व्यक्ति को पापी नहीं ठहराया। उसने इस तथ्य को जाहिर किया कि मानव पापी है। जैसा हमने देखा कि व्यवस्था मनुष्य को मसीह यीशु के निकट लाने के लिए दी गई। वह हमारा संरक्षक अर्थात शिक्षक है जो हमारा हाथ पकड़कर क्रूस के निकट पहुंचाता और हमसे बोलता, छोटे मानव तुम्हें मुक्तिदाता चाहिए क्योंकि तुम पापी हो। मित्रों, अब हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं। वे जो दो बड़े भागों में विभक्त हैं, एक भाग मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध और दूसरा मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध की चर्चा करता है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 3 पद में हम पाते हैं। परमेश्वर अनेक ईश्वरवाद की भर्त्सना करते हैं जिसमें अनेक ईश्वरों पर आस्था प्रकट की है। अनिश्वरवाद के बारे में कोई चर्चा नहीं है क्योंकि उस गुण में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था, कारण वे सृष्टि के इतने निकट और परमेश्वर के मूल प्रकाशन के बिल्कुल करीब थे। राजा दाऊद के समय से ही हमें नास्तिक लोगों का आभास मिलता है। दाऊद ने तो उन्हें मूर्ख कहा है। भजन संहिता 53 उसके 1 में लिखा है, मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। मित्रों, वर्तमान काल में किसी कॉलेज का प्राध्यापक जो सबसे अधिक ज्ञानी पंडित हो सकता है, वह भी नास्तिक बनता और परमेश्वर उसे मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं। आजकल बहुत से नास्तिक लोग हैं क्योंकि अब हम अपनी मूल सृष्टि से बहुत दूर एवं लोग परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को ग्रहण भी नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर ने इसराइल से कहा, तू मेरे अतिरिक्त अर्थात तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर नहीं मानना। परमेश्वर ने राष्ट्र को इस प्रकार का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उन दिनों में मानव के लिए संतुलन बनाए रखना बड़ा मुश्किल कार्य था। उस समय अनेक देवताओं की पूजा एक साधारण सी बात थी। आज किसी भी ईश्वर की उपासना न करना अधिक प्रचलित है। अब देखते हैं कि अब घड़ी का घंटा दूसरी ओर डोल रहा है। इस पद में ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि परमेश्वर अनेक ईश्वरवाद की भर्त्सना करता है और पौलुस इसी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसके 21 से 25 पद में कहते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया किंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया और वे अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। मित्रों, कुछ लोगों का मानना है कि उपर्युक्त अवतरण आजकल हम पर लागू नहीं होता। कुलिसियों के पत्र 3 अध्याय उसके 5 पद से पता चलता है कि लोभ मूर्ति पूजा के सदृश है। जिस किसी वस्तु के लिए आप अपना सब कुछ परित्याग करते हैं या दांव पर लगाने की तैयारी करते हैं या आप तैयार होते हैं, वही आपका देवता व ईश्वर बन जाता है। बहुत से लोग बाचूस देवता का पूजा नहीं करते हैं, जो विशेष पैरों वाला यूनानी देवता व शराब और इश्रा का रोमन देवता है, परंतु शराब की बोतल को पूजते हैं। आज भी हमारे देश में करोड़ों शराबी मौजूद हैं। शराब में लोगों की दिलचस्पी इस बात से प्रकट होती है कि राजकीय कोष में सबसे अधिक कर या टैक्स तथा इसके कारण प्रतिदिन होने वाली दुर्घटना में खर्च होने वाली राशि से पता चलता है। इस पीढ़ी में इसका प्रचार या प्रसार विज्ञापनों द्वारा करके लोगों के मस्तिष्क को भ्रमित कर दिया जाता है और बिना समझे ही ऐसे लोग वाचूस देवता की पूजा में संलग्न हो जाते हैं। मित्रों, दूसरे प्रकार के अन्य लोग हैं जो अफ्रोदीत एक यौन प्रधाव देवी की उपासना करते हैं। कुछ लोग धन की पूजा करते हैं। जिस किसी पर आप अपना समय देते हैं या दिल लगाते हैं तो वही आपका देवता अथवा ईश्वर बन बैठता है। परमेश्वर कहते हैं कि हमारे लिए उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं होना चाहिए। मित्रों, हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। प्रभु का नाम व्यर्थ लेने का अर्थ इस निंदा से है। हमारे युग में आजकल यह अत्यधिक प्रचलित है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा कभी नहीं बदलती। उसका व्यर्थ नाम लेना गलत है, क्योंकि वह परमेश्वर है और वह परम पवित्र है। यहाँ शब्दों की कमी महसूस होती है। बहुत से लोग अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं या किए बिना अपने को व्यक्त नहीं कर पाते। एक व्यक्ति जो कई वर्ष पूर्व अद्भुत रीति से बच गया था, मुझसे बोला, जब मेरा परिवर्तन हुआ मेरा शब्दकोश लगभग आधा खाली हो गया था। और यही उसका मतलब था कि वह अब बदल गया है। अब हम चौथी आज्ञा को पाते हैं, जो निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 8 से 11 पद में है। लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुन्दर और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। मित्रों, इसराइली राष्ट्र को विश्राम दिवस अद्भुत रीति से प्राप्त हुआ था। यह एक वाचा थी, यह परमेश्वर और इसराइल के संतानों के मध्य था। हम निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय उसके 13 से 17 पद में पढ़ते हैं, मेरे समझ से निश्चित तिथि व दिन प्रमुख नहीं है, क्योंकि तिथि या कैलेंडर परिवर्तित होता रहता है, तो संभावना की जाती है कि 7वां दिन शनिवार का दिन होगा अथवा नहीं, मेरे विचार से कदापि नहीं, क्योंकि जहां तक हम समझते हैं कि किसी भी दिन को माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विश्राम दिवस सप्ताह का प्रथम दिन रविवार के रूप में मानते हैं, यह भी हो सकता है या नहीं भी, परंतु हम इसलिए इस दिन को मानते हैं क्योंकि इस दिन हमारा प्रभु मृतकों में से जीवित हो उठा है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन निर्गमन की पुस्तक में ही हम बाद में करेंगे। हमारा अगला अध्ययन आज्ञाओं के दूसरे भाग से है, जिसमें मानव का संबंध दूसरों से प्रकट होता है। यह परिवार से आरंभ होता है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। मित्रों, एक पिता और माता को उनके बच्चों के लिए समान पात्र बनना चाहिए। इस आज्ञा के विषय भी आगे चर्चा होगी। अब हम 6वें आज्ञा में आते हैं, तू हत्या न कर। इस आज्ञा का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो युद्ध विशेष के विरोधी हैं। उनका कहना है, तू हत्या न कर, अतः सैनिक नहीं बनना चाहिए। यह आज्ञा तू हत्या न कर एक राष्ट्र को नहीं दी गई, परंतु व्यक्ति को दी गई थी। एक व्यक्ति दूसरे की हत्या न करे, इसलिए व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे देश में जाकर हत्या नहीं करना चाहिए। तू हत्या न कर, इससे मतलब सैनिक सेवा में जाने से नहीं है, और न ही अपराधियों को दंडित करने से है। एक राष्ट्र को मानव जीवन को बचाने हेतु दूसरे मानव जीवन को समाप्त करने का अधिकार प्रदत्त है। तू हत्या न कर एक ऐसी आज्ञा है जो व्यक्ति पर लागू होती है कि वह किसी की जान ना ले, जिसके विषय हमारे प्रभु ने चर्चा में इसे गुस्सा बताया और कहा, अपने भाई पर क्रोधित नहीं होना। 7वीं आज्ञा है, तू व्यभिचार न करना। हम यौन क्रांति युग के मध्यकाल में जीवित हैं। निश्चित ही यौन समस्या नई नहीं है, परंतु यह निश्चित ही विवाह संबंधों से परे किया गया पारिवारिक जीवन व्यभिचार है। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है, मनुष्य भले ही इसे समझे कि उसने बदल डाला, परंतु ऐसा नहीं किया। यह आज्ञा आज भी वैसा ही है जैसे थी। अब हम देखते हैं 8वीं आज्ञा, तू चोरी न करना। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 15 पद में। एक विशेष बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यदि आपको व्यभिचार की इजाजत मिल गई, तो चोरी करने और हत्या करने की भी आपको मिल गई, क्योंकि ये सब कुछ एक साथ ही होते हैं। यदि एक का आनंद लेना ठीक है, तो फिर सब का क्यों नहीं? यदि एक गलत है, तो सभी गलत हैं। अब हम 9वीं आज्ञा में आते हैं, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी नहीं देने का अर्थ पड़ोसी से झूठ बोलना है। अब 10वीं आज्ञा है, तू किसी के घर का लालच न करना। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 17 पद में हम इसे पाते हैं। लालच पौलुस प्रेरित के अनुसार कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में मूर्ति पूजा के बराबर है। यह हमारे युग का सबसे बड़ा अपराध है। परमेश्वर हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी साक्षी और लोभ सभी की भर्त्सना करते हैं। हम आगे भी इन 10 आज्ञाओं को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यहाँ हमारे अध्ययन की श्रृंखला का एक भाग समाप्त हुआ और हमें आशा है कि आपको यह संदेश अवश्य पसंद आया है और आपने अपने आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। हमारे अगले संदेश में आपके आत्मिक उत्थान के लिए और मन की शांति के लिए भरपूर प्रयास किया गया है। कृपया आप उसे सुनना ना भूलें और अपने जीवन में इन आज्ञाओं को माने ताकि आप परमेश्वर के उन असीम शांति को अपने जीवन में पा सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना।